नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ौत स्टेशन पे दिल्ली और शामली के बीच दो नई मेमो ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में महिला सशक्तिकरण पर एक जागरूकता कार्यक्रम सशक्ति का आयोजन किया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 10वीं कक्षा के एक विद्यार्थी के दुखद आत्महत्या के बाद सेंट कोलंबा विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखकर विद्यालय से घटना की विभागीय जांच पर जवाब मांगा। वरिष्ठ अभिनेता और पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र का आज सुबह निधन और 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी का आज 350वां शहीदी दिवस है। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बड़ौत स्टेशन पे दिल्ली और शामली के बीच दो नई मेमो ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि शामली स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि मेमो ट्रेनें छात्रों और पेशेवरों के लिए बेहतर यात्रा विकल्प प्रदान करेंगी और कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी तथा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी।
दिल्ली शामली सहारनपुर गन्ने का बड़ा हब है ये, और यहाँ पर किसानों की छात्रों की बहुत एक बड़ी डिमांड है, जिस कारण से प्रधानमंत्री जी ने इस रूट पे बहुत ध्यान देकर कई अपग्रेड्स किए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट किया है। दो ट्रेन सर्विसेज आज चालू की गई हैं, जो कि दिल्ली को शामली से जोड़ेगी। इस लाइन को डबल करने का काम हाथ में लिया है और बहुत जल्दी दिल्ली से शामली वाले सेक्शन को डबल किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 10वीं कक्षा के एक विद्यार्थी के दुखद आत्महत्या के बाद आज सेंट कोलंबो विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखा। इस पत्र में श्री सूद ने विद्यालय से घटना की विभागीय जांच पर जवाब मांगा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी बच्चे को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे अनसुना या अनदेखा किया जा रहा है। श्री सूद ने विद्यालयों में एक दयालु और भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क, काउंसलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक प्रशिक्षण पहल को मजबूत करने के लिए सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत अब तक कुल 23 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें से 42 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि आगे की जांच और पूछताछ अभी जारी है। इस ऑपरेशन का केंद्र साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म कर अपराधियों को गिरफ्तार करना और नागरिकों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल डिवाइस और उपकरण को जब्त करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
मेहनत की चमक और हकी मुस्कान, श्रमिक का सम्मान, ये है नई पहचान।
हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। देश अब ऐसे लेबर कानूनों को बदल रहा है, रिफॉर्म कर रहा।
भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताओं के साथ श्रम कानूनों में सुधार किया है, जिससे संवर रही है देश के करोड़ों श्रमिकों की जिंदगी। अब ना सिर्फ मेहनत का सही मेहनताना मिलेगा, बल्कि कार्यस्थल भी होगा सुरक्षित और हर श्रमिक को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का भरोसा। यह है आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सशक्त कदम। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.labor.gov.in। आत्मनिर्भर भारत के लिए लेबर रिफॉर्म, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में महिला सशक्तिकरण पर एक जागरूकता कार्यक्रम सशक्ति का आयोजन किया। प्रदर्शन में महिलाओं के आत्मविश्वास बढ़ाने और कठिन परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से सामना करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए आत्मरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई की उपायुक्त अंजिता चेप्याला ने कहा कि दिल्ली पुलिस प्रत्येक महिला को सुरक्षित और सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि प्रत्येक महिला हर जगह पर सुरक्षित और सशक्त महसूस करे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए त्वरित और अधिक सुलभ सहायता सुनिश्चित करने हेतु एक नया हेल्पलाइन नंबर 14490 शुरू किया है। एक वक्तव्य में आयोग ने कहा कि यह टोल फ्री नंबर आयोग की मौजूदा हेल्पलाइन से जुड़ा एक आसानी से याद रखने योग्य लघु कोड के रूप में कार्य करता है। इसके माध्यम से महिलाएं बिना किसी देरी के सहायता प्राप्त कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गीता का संदेश केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे विश्व का ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि गीता ने हम सभी के जीवन को प्रभावित किया है और गीता के प्रचार प्रसार में हरियाणा सरकार पूरा सहयोग कर रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवा पीढ़ी की चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आज जब मैं भगवान श्री कृष्ण की ज्ञानी भूमि वही धरती है जहाँ 5000 से अधिक वर्ष पहले मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी की पावन तिथि पर समस्त मानवता के उत्थान के लिए यह दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। और मुझे तो कभी कभी लगता है यदि किसी को भी भारत की आत्मा को समझना है तो उसे कुरुक्षेत्र की धूल में उसका प्रतिबिंब ढूंढना चाहिए।
पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है।
पहलगाम का वह विभत्स क्षण आज भी राष्ट्रीय स्मृति को विचलित करता है। वह घटना भारत की शांति प्रियता को ही चुनौती नहीं थी, आतंकवादी और उनके सरपरस्त यह मान बैठे थे कि भारत की शालीनता उसकी कमजोरी है, लेकिन वे भूल गए भारत गीता का देश है जहां करुणा भी है और युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा की प्रेरणा भी है। जो लोग हमारी सहिष्णुता को कमजोरी समझ बैठे थे उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसे आज तक वह भूल नहीं पाए।
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया और K2 बायो इथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी। यह पैलेट प्लांट पराली से प्रतिदिन 240 टन पैलेट का उत्पादन करेगा और स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देगा। पैलेट प्लांट के उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री जोशी ने कहा कि नई नीति के तहत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए बायोमास और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का सह प्रज्वलन अनिवार्य कर दिया है।
जो पहले पराली एक बहुत बड़ा बोझ था वो प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुसार वो धीरे धीरे वो सिर्फ उसको निपटाने का नहीं उसको प्रॉफिटेबली वेस्ट एनर्जी कैसे कन्वर्ट करना इस सोच चल रहा था। उसमें ये 240 टीपीडी पैलेट प्लांट जो है ये बहुत बड़ा योगदान इससे होता है और ओवरऑल जो पराली है बहुत बड़ी मात्रा में है लेकिन शुरुआत तो आज हो गया है।
संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट के सामूहिक तत्वाधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया अ स्टडी इन द प्रोविंशियल ऑफ इंपीरियल फाइनेंस पर आधारित थी। इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश की आजादी के बाद केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों तथा संसाधनों के बंटवारे और वित्त आयोग के गठन को लेकर 56 बैठकें हुई। पद्म भूषण से सम्मानित वरिष्ठ फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का आज सुबह मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। 89 वर्षीय धर्मेंद्र स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके निधन से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया।
ना जा कहीं अब ना जा, दिल के सिवा।
बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र आज इस दुनिया से रुखसत हो गए। पंजाब की अपनी साधारण शुरुआत से लेकर एक दिग्गज सितारा बनने तक धर्मेंद्र का जीवन जुनून और सिनेमा से भरा रहा। 1935 में जन्मे धर्मेंद्र ने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से फिल्मी सफर की शुरुआत की और शोले, सत्यकाम, चुपके चुपके, मेरा गांव, मेरा देश, नौकर बीवी का, आई मिलन की बेला, प्रतिज्ञा, धर्मवीर जैसी फिल्मों के जरिए अपने शानदार अभिनय का परिचय दिया। 6 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र को 70 के दशक में दुनिया के सबसे आकर्षक पुरुषों में से एक चुना गया था। 2012 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने न सिर्फ अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाई बल्कि अपनी जिंदा दिली से भी लोगों को अपना मुरीद बनाया। वे आज बेशक हमारे बीच न हो पर उनकी फिल्में और अदाकारी सदैव उनकी उपस्थिति की अनुभूति कराएंगी।
पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वरिष्ठ फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी का आज 350वां शहीदी दिवस है। इस अवसर पर नई दिल्ली के लाल किला परिसर में आयोजित भव्य समागम का दूसरा दिन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भरपूर रहा।
शहीदी दिवस के दूसरे दिन की शुरुआत गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से गुरु साहिब के पावन स्वरूप की परिक्रमा से हुई, जिसे पालकी में रखकर लाल किला पंडाल तक लाया गया। अरदास और शब्द सुमिरन के वातावरण में हजारों श्रद्धालु इस परिक्रमा में शामिल हुए। लाल किले प्रांगण में स्थापित विशेष म्यूजियम भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें गुरु साहिब के जन्म, तपस्या, यात्राओं और शहादत का पूरा इतिहास चित्रों, दस्तावेजों और संस्मरणों के माध्यम से दर्शाया गया है। वहीं 24 घंटे चल रही लंगर सेवा में लोग लंगर का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ ही आज शाम दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के 13 स्कूलों के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सामूहिक कीर्तन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। संध्या ढलते ही लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी किया गया, जिसमें सिख इतिहास और गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत को भव्य और भावपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण, दिल्ली।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में 4थे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। राजधानी में आज दिन में मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं राजधानी में वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ौत स्टेशन पर दिल्ली और शामली के बीच 2 नई मेमो ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में महिला सशक्तिकरण पर एक जागरूकता कार्यक्रम सशक्ति का आयोजन किया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 10वीं कक्षा के एक विद्यार्थी के दुखद आत्महत्या के बाद सेंट कोलंबो विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखकर विद्यालय से घटना की विभागीय जांच पर जवाब मांगा। वरिष्ठ अभिनेता और पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र का आज सुबह निधन और 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी का आज 350वां शहीदी दिवस है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।